Sí, John Group.
Shanti. Avec Vata Daki, personal Mulakat. Personal est Shanti. Et Bhatiya Dilata est. 2008 में दादी गुलजार ज्ञान सरोवर में क्लास कराने आई थी और उसके पहले दिन ही बाप दादा आके गए थे और बिल्कुल दादी के सामने ही मैं बैठा हुआ था और दादी बोल रही थी कि देखो कल बाबा आया और बाबा ने कहा कि बच्ची आपको ए ए करना। मैंने तो सोचा अरे बच्ची तो यहाँ थी ही नहीं तो बच्ची को कब कहा बाबा ने। लेकिन दादी यहाँ नहीं होते हुए भी जब बाद में मुरली पड़ती है तो दादी अनुभूति क्या कर रही है, पर्सनल मीटिंग, कि जैसे कि दादी बाबा के सामने है और बाबा उनको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो आज हम भी ऐसी अनुभूति करेंगे जो बाप दादा के महावाक्य है उसी अनुसार डायरेक्ट की पर्सनली हम बाबा से मिल रहे हैं और बाबा हमसे क्या कह रहे हैं। आज का टाइटल है मुरली का, ग्रुप के लिए बाबा ने कहा हुआ, साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बना। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बना। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो, मौजों में रहते हो वा कभी मौज में कभी मुंजते हो या सदा मौज में रहते हो, क्या हालचाल है? देखिए बाप दादा ने पूछ रहे कि क्या हाल चाल है। तो बाबा ने पूछा है कभी मौज में हो, रूहानी मौज में हो या कभी मूंजते हो, क्या हाल चाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंजते हो? तो किसी ने कहा कि थोड़े टाइम के लिए, है ना, यहाँ तो मधुबन है ना, परिस्थिति आती भी है तो क्या हो जाता है, सामने बाबा है तो थोड़े समय के लिए मूंझते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं। और उसे थोड़े समय में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? बाबा ने पहला प्रश्न पूछा हालचाल क्या है, ठीक है, और फिर बाबा पूछ रहा है कि अगर काल आ जाए तो, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है उस थोड़े टाइम में काल आ जाए तो, अकाले मृत्यु का तो समय है ना, तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंजते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंत मति सो गति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना सदा, एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। मामा कह रहे कि कोई भी समस्या आए वो हमारे संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य है उसमें विघ्न रूप ना बने। अंत अच्छी तो भविष्य भी आदि भी अच्छा होता है, जैसा मत में होगा वैसी गति होगी। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता ही है, लेकिन थोड़ा समय भी एक सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। बाबा कहते कि आप तो अमूल्य आत्माएं हो और दुनिया वालों के साथ आपका कंपेयर हो ही नहीं सकता, वो कितना भी VVIP हो। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कैसे होते हैं विशेष करते करते साधारण कैसे हो जाते हैं, कोई एग्जांपल?
करते करते पर्सनल में चले जाते
नहीं, कार्य तो हमारा विशेष है, लेकिन क्या समझते हैं कि साधारणता। बाबा कहते कि साधारणता न हो, ये चेक करो। तो चेक करने के लिए पता होना चाहिए कि हम कैसे साधारण बन जाते हैं,
बताओ।
नहीं आप बताओ ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ। आपने आपने आगे बढ़ाया है, लेकिन मैं तो स्टूडेंट हूँ।
आज आप स्टूडेंट नहीं हो।
कहावत है बूम की गई सो हौद से कहां से आई। तो एक टाइम पे अकबर राजा ऐसे अत्तर की एक लिपि होती है, वो देख रहा होता है, उससे एक बूंद गिर जाती है नीचे गलीचे पे। तो उस टाइम पे कोई नहीं होता, उसे लगता है कोई नहीं देख रहा, तो वो एक बूंद उठाने जाता है। तो वो तभी टाइम उसी टाइम पे बीरबल आ जाता है। तो अकबर को ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, तो ये इतनी सी एक बूंद उठाने के लिए मतलब उसको कमी लग मतलब उसके नेचर से वो कम हो जाता है। तो बाद में उस खुद की उदारता दिखाने के लिए हौद के हौद भर के मतलब टैंक के टैंक भर के पत्थर लोगों में बांट देता है, लेकिन बीरबल फिर भी हंसता है। बीरबल एक ही बात बोलता है, बूंद की गई से हौद से कहा से, मतलब हाँ उसकी साधारणता उस टाइम पे होगी ना वो बचाने के लिए।
हम कर तो रहे हैं विशेष कार्य, लेकिन कुछ बाबा कहते कि साधारणता में आ जाते हैं, तो ये विशेष आत्माओं का लक्षण नहीं है। उससे एक भी गलती नहीं हो सकती, थोड़ी भी साधारणता नहीं हो सकती, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम बाहर का खाते नहीं है, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम टीवी नहीं देखते, है ना, ये सब नहीं करते नहीं करते नहीं करते, तो क्या दिखाई दे रहा है, सब त्याग ही दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि उसमें और ये त्याग की बातें हो गई, लेकिन इससे और अच्छा क्या दिखाई दे रहा है दुनिया वालों को। बाबा पूछ रहे हैं कि आपने आपका भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया, बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे थे अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारण नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे, तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि चलो स्वर्ग की बात बाबा ने बताई है, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं, साधारण भी बने तो क्या हर्जा, सतयुग में तो आएंगे ही, अभी इतने नजदीक है तो वहां भी आ जाएंगे। और वहां बाबा बता रहे एग्जाम्पल कि वहां तो दुख भी नहीं होगा, हर्जा है या चलेगा। तो चेक करो, हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो, जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली न चाहते हुए भी चलता रहता है ना, देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना, ऐसी देह अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए, तो जो नेचर होती है वो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः ही हो जाता है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले, ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है नहीं, हर एक के मुख से मन से यही निकले कि मेरी नेचर है विशेष आत्मा के विशेषता के। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है, जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती है, किसी की नेचर रमणीक होती है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया, कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए, कोई पूछे आपकी नेचर क्या है तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ये विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई क्योंकि मरजीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं है, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव। तो अभी क्या करेंगे, बाप दादा पूछ रहे, तो अभी क्या करेंगे, साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं। सामने माताएं बैठी थी तो बाप दादा पूछ रहे हैं, माताएं मौज में रहती है, कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में रहो, मुंझाने वाला मुंझ जाए लेकिन आप नहीं मुंझो। अब ये तो पर्सनल मुलाकात चल रही है, अब कुमार क्या कहेंगे, बाप दादा माता उनको ही पूछ रहे हैं, ऐसा सोचेंगे नहीं। तो बाप दादा प्रश्न कर रहे हैं कि कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में रहो, मुंझाने वाला मुंझ जाए लेकिन आप नहीं मुंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो आप अपना काम करे और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, होंगे तभी तो कह सकेंगे ना, जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं है क्योंकि विशेष आत्माएं हैं, क्या याद रखेंगे, मौज में रहने वाली विशेष आत्माएं, ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है, जहां भी रहो लेकिन ये आवाज बुलंद हो, कौन सी, कि ये ब्राह्मण आत्मा है तो विशेष है। तो कब कहा आपको दुनिया ने विशेष, ना जब हम बाबा के पास आते हैं, ज्ञान अच्छा लगने लगता है तो पहले तो दुनिया कमेंट्स क्या करती है, अरे ये तो वहां जाता है, वहां तो ये नहीं करना होता है, वहां तो वो नहीं करना होता है। लेकिन बाप दादा पूछ रहे हैं कि जहां भी रहो लेकिन यह आवाज बुलंद हो कि यह ब्राह्मण आत्मा है विशेष, ये ना ओम शांति में जाते ही ये तो है ही विशेष। कभी कभी क्या होता है, सामने नहीं कहते लेकिन बाद में कहते कि हाँ इनमें ये गुण है, ये विशेषता है। तो गुप्त से प्रत्यक्ष तो होना ही है ना, सबकी नजर ब्राह्मण आत्माओं की तरफ जानी ही है, जा रही है कि अभी शुरू नहीं हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं कि आपके तरफ आपके जो गांव वाले हैं आपके संग में आते हैं उनकी नजर आपके ऊपर जाती है, या अभी भी बाबा कह रहे हैं कि गुप्त ही है। तो कब शुरू होगा है, जब उनको प्रैक्टिकली कुछ दिखाई देगा या प्रैक्टिकली हमारा भी कुछ अंदर में विचार सागर मंथन चल रहा होगा। इससे एक बात याद आती है, कॉलेज में हमारी मराठी सब्जेक्ट की मैडम थी, बिल्कुल दिल के देखे तो उन्होंने आ गई और पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्या हुआ उनको, चेयर पे बैठ गई और कहती है मराठी में कहती है, देवा तुझा दारी विसावा पुनर्जन्म नसावा। मना हे भगवान मैं तेरे दर पे आई हूँ लेकिन अब मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, राइमिंग जोड़ दिया उन्होंने। तो मैं तो सामने ही बैठा था, मैडम को पूछा, मैडम कन्फर्म नहीं चाहिए पुनर्जन्म? हाँ बाबा नहीं चाहिए, आप तो यूथ हो, पुनर्जन्म नहीं चाहिए, कन्फर्म कन्फर्म। तो उसके पहले ही दिन वट सावित्री की पूजा हुई थी तो मैंने मैडम को पूछा, मैडम एक कल का इतना सारा डेकोरेशन और वो सात जन्म यही पति मिले उसका क्या हुआ? तो सब कहने लगे हाँ मैडम ये तो ठीक बात है, बताओ आपको आप बोर हो गए क्या, सात जन्म नहीं चाहिए आपको? तो बाबा है ना कैसे मदद करता है कि हमारे अंदर वो बात चल रही है, झाड़ का नॉलेज चक्र का नॉलेज हमारे बुद्धि में है, 84 जन्मों का नॉलेज, तो वो बात हम तुरंत पकड़ सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ठीक क्या है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सबकी नजर ब्राह्मण आत्माओं की तरफ जानी ही है, जा रही है कि अभी शुरू नहीं हुआ है, तो कमाल करके दिखाने वाले हो ना, ऐसी कमाल करो जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो। सेमिनार किया, कॉन्फ्रेंस की, यह तो सभी करते हैं, कोई नई बात करके दिखाओ। तो सभी ठीक हो? बाबा दूसरी बार पूछ रहा है, पहली बार क्या पूछा बाबा ने, हालचाल ठीक है? कौन सा हालचाल पूछा बाबा ने, मौज में रहते हो या मूंछते हो? और अभी फिर बाबा लास्ट में भी पूछ रहा है, सभी ठीक हो, बहुत आराम से रहे हुए हो ना, निर्भय आत्माएं हो और उनको भी निर्भय बनाने वाले, ऐसे हो या कभी कभी डरते हो क्या होगा कैसे होगा? नहीं, जो होगा अच्छा होगा, दुनिया के लिए तो बुरा है लेकिन आप सोच समझ सकते हो कि परिवर्तन होना ही है, इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि जानते हो कि होना ही है। अच्छा
इधर कैसे है?
इधर तो हम आज नहीं आए हैं, मेरा एक ही सामान रहता है अंदर से कि मैं तो पुराना हूँ
क्योंकि बचपन से वो जा रहा जाता है माँ के साथ।
यहाँ पहले तो आया था मम्मी पापा के साथ 95 में, वो तो याद नहीं मुझे, लेकिन 97 की दिवाली ओम शांति भवन में दादी जी को 75 पूरा हुआ था, तो वो दिन आज भी याद आते हैं, दादी के साथ केक काटना, दादी के साथ खेलना, बहुत एक हिस्ट्री बन गई यज्ञ में दादी के साथ केक काटते हुए, वीडियो अभी भी है दादी के सामने डांस करते, और विशाल भवन में भी मैं जब भी जाता हूँ वहां की एक यादें है, पहले मम्मी के साथ इधर रहता था अभी इधर रहने लगा
भाई, इधर
अभी इधर रहने लगा। तो बहुत सारी यादें हैं, जैसे भाई सब बताते हैं कि मधुबन में हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा होता है, और बचपन से यही लगन कि क्या करना है, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। और मधुबन में तो रहते थे वहां पे विशाल भवन में, तो वहां पे मम्मी, अगर हम दोनों भाई थे ना साथ में, तो दोनों अगर आपस में कुछ हो जाते तो मम्मी बोलती थी देखो मस्ती नहीं करना, मैं तो दाढ़ी वाले बाबा के पास दे दूंगी। तो वहां पे घर में तो किसी को डरते नहीं थे, लेकिन मधुबन में दाढ़ी वाले बाबा के पास दे दूंगी। तो अच्छा है इस बाबा के पास चले जाए। तो बहुत मजा आता था, दादी से सौगात, दादी से टोली। सौगात की याद आ रही मुझे कि सौगात के लिए हम बैठे थे मेडिटेशन हॉल में, और जैसे ही हम आगे गए तो बहन जी ने कहा दादी ये तो बच्चे हैं, इनको नहीं देंगे, इनको टोली दे दो, टोली दे दो। और भगा दिया वहां से। तो फिर हम तो गए चले गए। फिर दादी ने शाम के समय हमको बुलाया, दादी मीटिंग रूम में, दादी ने हमको इसे साथ में बिठा के हाथों से टोली खिलाया, और दादी ने एक छोटा सा बैग दिया हमें, उस पर गाड़ी का चित्र था, और दादी ने खुद हमें आत्मा का परिचय दिया, देखो आत्मा कहाँ रहती है, यहाँ रहती है, ये आत्मा ड्राइवर है, इस गाड़ी को चलाती है, दादी ने खुद आत्मा का परिचय दिया। और जब भी चिल्ड्रन पार्टी में आते थे तो दादी वो पांच बातें सिखाती थी, मतलब एक नशा रहता है अंदर से कि मैं दादी जी का स्टूडेंट हूँ, ये नए लोग है इन्होंने दादी को देखा भी नहीं, मैं तो पुराना हूँ। अंदर से नशा रहता है बिल्कुल। और वो दादी की जो बातें हैं कि हमने आज तक कि पिक्चर नहीं देखी, थिएटर के अंदर पाव नहीं रखा है, तो वो भी मैं अपना एक रिकॉर्ड बना के रखा हूँ कि मैं कभी थिएटर के अंदर पाव नहीं रखूंगा। टीवी तो अभी हो गया, लेकिन टीवी तो घर में था ही नहीं। तो दादी के साथ मना, दादी ने जो जो बातें सिखाई वो बातें तभी उसी समय धारण करने का चांस मिला। दादी ने कहा और वो रिकॉर्ड बन गया, वो अभी तक है। जब मैं पुणे में आया तो कॉलेज में बोलते थे कि अरे चलो अभी मॉर्निंग शो है चलो, तो मैं कहता नहीं है तो मेरा रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। ये कहते ऐसे भी कोई रिकॉर्ड होता है, थिएटर में पाँव नहीं रखूंगा। फिर और एक बात की मौन की, बचपन से हम देखता था हमारी जो टीचर बहन जी है वो मौन उनका रहता था सोमवार के दिन। कहता ये मौन पकड़ते मैं भी मौन रखू, तो मम्मी ने कहा हाँ तू बहुत बातें करता रहता है वैसे भी दिन भर, तो चलो संडे के दिन मौन। तो मौन के कारण बहुत सेवा भी कराई बाबा ने, और बहुत मजा आने लगा। आज बाबा ने बताया ना नेचुरल नेचर, वो एक नेचर बन गया और मौन पकड़ता था। भाई साहब ने तो बताया कि वो एक आउटपुट है, वो कोई साधु संन्यासी की तरह मौन पकड़ के थोड़ी बैठना है, हमारी अंदर से ऐसी अवस्था हो जाए जो अपने आप हम अंतर्मुखी बन जाए, अपने आप हमारा मौन हो जाए। लेकिन मौन के कारण भी बहुत फायदा हुआ, बहुत अलग अलग अनुभव हुए। उसमें से एक, मैं MLA ऑफिस में था 2 साल, तो वहां भी मेरा मौन कंटिन्यू था। अभी वो MLA को पता था कि इसको तो अभी कल मौन है, तो अभी हमें नागपुर जाना है, तो इस टिकट पहले से ही एयर टिकट बुक करवाना, तो ये तो पहले से ही करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले से ही मेरे से कहा कि अरे कल तो तू आएगा नहीं, तो ये टिकट मेरा करा के दे, तो टिकट किया। फिर उनका कैंसिल हुआ जाना, तो उन्होंने अभी कैंसिल करना है, इसका फोन तो बंद है, तो अभी क्या करे, फोन नंबर किसके साथ संपर्क करे। तो 2:00 PM आ गए मेरे घर में, और वो हाथ लगा के बैठ गए, इतना बड़ा बेटा है आपका, ये समझाओ आप इसको, मौन ये उम्र है क्या इसकी। मम्मी अपने काम में लग गए, पापा भी चले गए, उन्होंने कहा आप उसके साथ बात करो ना, उसके साथ काम। तो वो मुझे उठा के ले गए, टिकट कैंसिल करवाया। लेकिन वो जो उनके ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है कि बाबा ने कहा ना कि आपको देखते हैं, वो भी क्या कर लेते हैं कि एड्रेस कर लेते कि हाँ इसका मौन है, और भले सामने आपकी महिमा नहीं करते लेकिन उस चीज से बाद में बहुत अच्छे से सेवा होती रहती है अपने आप, जब हम अपने नियमों पर पक्के होते हैं तो सेवा अपने आप होती जाती। ऐसे नहीं कि वो MLA है तो हमारे पास तो कौन है, शिव बाबा है, तो हमें शिव बाबा की मत को धारण करना है, ना कि दुनिया वालों की मत को। नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं हुए, उन्होंने दूसरे MLA को बताया कि हमारा PA ऐसा है, हमारा PA ऐसा है कि वो टिकट कैंसिल कराना था तो उसका ओम शांति में जाता है, उसका मौन है वो। हाँ मेरे भी नहीं मानता माँ बाप तो क्या, वो तो सिर्फ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, उसने दूसरे MLA को बताया। तो आए तो थे रक्षाबंधन के दिन, बुलाया था तो आए।
डांस कौन सा किया था?
डांस कौन सा, गाना कौन सा?
वो डांस तो याद नहीं यहाँ का, लेकिन बाद में भी सेंटर पर बहने नहीं थी हमारे यहाँ, तो टीचर बहन मुझे ही सिखाती थी, और दसवीं तक इधर जो डांस चलता था स्वागत गीत पर वही स्कूल में भी वही चलता था। तो एक ही गाना दसवीं तक वही गाने पे डांस चलता था। झूम कर हम गा रहे हैं, झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गा। नहीं आना नहीं आता, मैं डांस किया था। मधुबन में तो
कुछ मधुबन के वृद्ध और अनुभवी और पूर्वज आत्माओं के मुख से जब ज्ञान चढ़ता है तो सुनने में आनंद आता है। तो आज बाबा ने कहा साधारणता को साधारणता से मर जाओ और विशेषता में जी रहे हो। ब्राह्मणों की हर बात सर की मुरली से, ब्राह्मणों की हर बात निराली है। ताली बजाने को कहा ना तो दो हाथों को तकलीफ क्यों देते हो? शांत पसंद है ब्राह्मण, हर बात निराली है, यूनिक है, अनूठी है, तो हर संकल्प विशेष, हर सेकंड हमारा विशेष, हर बोल विशेष, हर कर्म विशेष। साधारणता समाप्त हो जाए, जैसे कि हमारा नेचर ही नहीं है। हमारा नेचर क्या है? नेचर और नेचर विदेही अवस्था, अशरीरी अवस्था, देही अभिमानी अवस्था, जो कल भी बाबा ने कहा था। ये अवस्था अगर है तो इसके लिए क्या चाहिए? बहुत 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 क्या? अटेंशन
प्लीज,
अटेंशन प्लीज। बाबा बाप दादा स्पष्ट कह रहे हैं अटेंशन प्लीज, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत 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 अटेंशन चाहिए, चाहे वो जीवन मुक्त अवस्था हो, यहाँ की जीवन मुक्ति, या फिर वो विदेही स्थिति हो। बार 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 इसका अभ्यास और बार 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 अटेंशन, ये दो बातें कल मुरली में कही और आज भी कहा कि जो भी साधारणता है वो समाप्त हो जाए। और हमारा जीवन कैसा है? मौज में रहने का जीवन है, चाहे कोई मुंझाने की कोशिश करे परंतु हम मुंझे नहीं, आज का स्लोगन भी है यही, जीवन जीने की कला है मौज में रहना। तो हम मौज में रहने वाले हैं, सदा उड़ने वाले हैं, सदा हर्षित रहने वाले हैं, दुख की लहर हमारे अंदर नहीं आ सकती। ऐसा लक्ष्य रखना है कि जैसे कमलेश भाई ने लक्ष्य रखा ना, थिएटर में कदम नहीं रखेंगे। तो यह संकल्प ही है, एक संकल्प आत्मा को कितनी सारी बातों से बचा देता है, केवल संकल्प। तो एक संकल्प हमारा इतना शक्तिशाली है, केवल संकल्प की बात है। तो संकल्प अगर कर लिया, संकल्प के ऊपर ध्यान और हर समय हर सेकंड के ऊपर ध्यान, ये दो चीजें सबसे मूल्यवान है। हम अमूल्य है बाबा ने कहा, उसमें हमारा एक एक संकल्प शक्तिशाली हो और हमारा एक सेकंड भी वेस्ट ना जाए, क्योंकि अगर जो सेकंड हम वेस्ट कर रहे हैं, जो मिनट वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर काल आ जाए तो एक सेकंड भी धोखा दे सकता है। इसके लिए इन दो बातों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि सारे दिनचर्या में हमारा कोई भी समय व्यर्थ ना जाए, दिनचर्या रात्रिचर्या कोई भी, हमारा संकल्प हमारा समय व्यर्थ ना जाए। जो भी लीकेजेस है उन सबको रोक दो। पुरुषार्थ तो अच्छा कर ही रहे हैं, परंतु केवल उसमें नहीं रुकना है। कल बाबा ने कहा ना, मेजोरिटी पुरुषार्थ ग्रुप को देखा बाबा ने, चाहे तीव्र या कोई भी। अभी जरूरत किसकी है? प्रारब्ध। प्रारब्ध कौन सा? कोई सेंटर के निमित्त बन गए वो प्रारब्ध नहीं है, किसी सेवा के निमित्त बन गए वो प्रारब्ध नहीं है, अच्छा भाषण देने लगे वो प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध है जीवन मुक्ति, वो सब तो लिफ्ट है। किसके लिए? दुआएं प्राप्त करने के लिए, उड़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए। परंतु प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की। सेवाएं बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं वो प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध है मन की स्थिति, प्रारब्ध है निर्बंधन अवस्था। सम्मान समारोह कौन सा मनाना है? गुजरात की कन्याओं को क्या कहा करो? जीवन मुक्त का सम्मान समारोह मनाना है, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। जीवन बंध के जो धागे है, बाबा ने कहा जो तुम चित्र दिखाते हो उधर, कौन सा चित्र दिखाते हो? अज्ञानी बेड़ियों से बंधा हुआ है, वो है लोहे की जंजीरें। और यहां आने के बाद कौन सी है? सूक्ष्म महीन आकर्षण करने वाली रॉयल, जीवन बंध के धागे, चाहे एक धागा चाहे आधा धागा, इन सबको काटना है। हमारी अवस्था ऐसी हो कि जिसमें बाबा ने कल कहा ना, जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं वातावरण डबल दूषित होते, भिन्न भिन्न विधि से बंधन मुक्त ऐसा अवस्था हो कि एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो। हमें लक्ष्य रखना है कि जो भी बंधन है, अज्ञान काल में तो कम बंधन थे, ऐसा है कई आत्माओं का, ज्ञान में आने के बाद बहुत सारे बंधन उत्पन्न हो, तो ये सारे बंधनों को चेक करना और एक एक बंधन को नष्ट करना। क्योंकि बाबा ने कहा इसमें पहले मैं, कुमारियों को कल कहा ना बड़ों को नहीं देखना, पहले मैं, आपस में रोरियाम करो, एक दूसरे को ये वायदा याद दिलाओ। तो पहले मैं किसमें? बंधन मुक्त बनने में। पहले मैं किसमें? विधेयी स्थिति को प्राप्त करने में, क्योंकि विधेयी स्थिति है तो परिस्थितियां आएगी और चली जाएगी, जैसे बादल आए और गए। परिस्थितियां है, परिस्थितियां आने वाली है, परंतु प्रभाव नहीं डालेंगे। पांच तत्व जो है वो भी कोशिश करेंगे हिलाने की, परंतु हिला नहीं सकेंगे। तो जीवन मुक्त स्थिति, बंधन मुक्त स्थिति, विधेयी स्थिति और सदा मौज में रहना। मौज में कौन रह सकता है? जो आत्माभिमानी स्थिति में है वही मौज में रह सकता है, जो बंधनों में है वो कभी मौज में नहीं रह सकता। किसी भी तरह का बंधन हमें बांधे ना। कल जैसे हमने चर्चा की ना, बहुत सारे बंधन है, नाम मान शान का बंधन, प्रशंसा हो रही है उसका बंधन, हर बंधन से हमें ऊपर उठना है, क्योंकि माया हर दिन नए नए रूप धारण करके आती है। एक दिन में भी कभी स्त्री का रूप, कभी पुरुष का रूप, कभी कुछ कपड़े पहन के आती है, कभी कुछ कपड़े, कभी साधु के वेश में, कभी अलग अलग वेश में आती है। वो समझना बहुत कठिन है उसको, किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे 10 साल से है, चाहे एक दिन से हो, चाहे 50 साल से ज्ञान में, किसी को भी नहीं छोड़ती है, होते ही रहेगा। परंतु बहुत 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 अटेंशन, बहुत 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 अटेंशन, क्योंकि लक्ष्य जितना ऊंचा है उतना हमारा पुरुषार्थ भी ऊंचा होना चाहिए। इतना ऊंचा लक्ष्य रखा है तो पुरुषार्थ भी उतना ही ऊंचा रहना चाहिए। और कल एक और एक जो बात कही थी, बैलेंस। सेवाएं तो स्वतः ही होती रहेगी, हम सेवाओं में इतना उलझ ना जाए, सेवाओं के जंगल में कहीं खो ना जाए। स्थिति का बल और सेवा का बल, सेवा स्वतः ही होगी परंतु स्थिति के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये बैलेंस चाहिए तो ही क्या हो सकता है, ये बैलेंस रखो और फिर सेवाओं में आगे बढ़ो, स्थिति को ऊंचा करो और फिर सेवा में आगे बढ़ो। ये बैलेंस अगर है तो ब्लेसिंग मिलेगी, तो जमा होगा और दुआएं जमा करने का समय अभी है, आज भी बोला समय अभी है, वहां तो दुआएं देंगे जड़ चित्र। तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि में निरंतर गूंजती रहे, निरंतर हमें याद आती रहे, तो ये हम स्थिति ऊपर रहेगी। जैसे ज्ञान विस्मृत हो जाता है तो व्यर्थ वहां आ जाता है। साइंस का एक नियम है कि कोई भी स्थान बिना खाली नहीं रह सकता। हमारे बुद्धि से जिस समय ज्ञान निकल जाता है तुरंत तो व्यर्थ वहां आ जाता है, भूत वहां आ जाते हैं। भूत कहां रहते हैं? भूत बंगले में, खंडेर में, जहां कोई नहीं रहता, निर्जन स्थान में, ऐसे स्थान में भूत रहते हैं। तो जैसे ही ज्ञान बुद्धि से गया तो भूत की प्रवेशता आ गई, हमको पता ही नहीं, वो आके बैठ गया है, अपना कार्य करना चालू है। हमें लग रहा है जैसे कल कहा था ना बाबा ने, स्वयं की पर्सनैलिटी को देखते और जानते पर महसूस क्या करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं, ऐसी महसूसता होती है। ये रॉन्ग को राइट समझते हैं, ऐसा हो जाता है, जो उल्टा है उसको सुलटा समझने लगते हैं। जिस पथ पर हम विपथ हो जाते हैं, विपथ गलत मार्ग से चल जाते हैं। तो निरंतर ज्ञान हमारी बुद्धि में गूंजता रहे, ये लक्ष्य रखना है। इसके लिए निरंतर चिंतन करते रहना है, जैसे एक एक वाक्य हम पढ़ते हैं उसके साथ जीवन के अनुभवों को देखना है कि इस वाक्य के साथ, जैसे कमलेश भाई ने जोड़ा, इस वाक्य के साथ मेरे जीवन में क्या क्या जुड़ा हुआ है। केवल ये उस दिन नहीं जिस दिन पढ़ना है, हर दिन, हर दिन, हर दिन के महावाक्यों में हमें एक नया उमंग भर दे हमारे अंदर, ऐसा लगे कि ये मेरे लिए कहे जा रहे, ऐसा लगे कि उन महावाक्य जो है वो केवल वाक्य नहीं है परंतु जैसे हमारे जीवन के साथ के जो अनुभव है वो इसमें दिख रहे हैं कि हम उससे जुड़े। तो ऐसा दिव्य अनुभव हमको करना है। अच्छा, ओम शांति। कल
एक प्रश्न इसलिए ही लेते, मतलब जब हम योग करते हैं हमारा साफ करता है, विकर्मिनाश होता है, तो इसमें जीवन में क्या होना पता चलता है कि विकर्मिनाश
है? जैसे अभी इसका पैरामीटर क्या कहेंगे, इसका मापदंड क्या है कि हमारे विकर्म विनाश हो जाए? सबसे पहला तो वह है कि योग में नींद आना बंद हो जाए। जिसके विकर्म बहुत ज्यादा है उसका एक सूक्ष्म, जिसको नींद बहुत आती है सब कुछ करने के बाद भी, समझ लेना कि विकर्मों का बोझ बहुत ज्यादा है। एक तो सबसे पहला कि नींद खत्म हो जाएगी, नींद आएगी नहीं फिर। एक दूसरा,
नींद कभी नहीं आएगी,
अमृत वेला योग की बात चल रही है। दूसरा, जैसे जैसे विकर्म विनाश होते जाएंगे हमें हल्का महसूस होने लगेगा, स्थिति हल्की होती जाएगी। तीसरा, जैसे जैसे विकर्म विनाश होते जाएंगे योग लगाने के लिए जो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ था वो अभी नहीं है, बैठे और अशरीरी, बैठे और डिटैच्ड। पहले बैठो फिर वो, मैं ये नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, दिन भर में जो जो हुआ वो सब मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, फिर उसके बाद में आधे घंटे के बाद मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, फिर धीरे धीरे शरीर से अभी बाहर निकल रही हूं, ये तब तक तो टाइम पूरा हो जाता है। तो ये इतना जो टाइम लगता है योग लगाने को, खाली आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होने, अभी तो बाकी का तो बाकी है, सर्व संबंध जोड़ना, परम धाम में अनुभूति, स्वर्ग की अनुभूति और द्वापर से भक्तों को सकाश, और ब्राह्मण जीवन की अनुभूति और फरिश्ता रूप बनकर विश्व को सकाश, ये सब तो अभी बहुत दूर है। वो स्थिति बनाने को इतना समय लगता है और फिर जब ये होता नहीं है तो फिर दुख होते रहते हैं। तो जैसे जैसे विकर्म विनाश होंगे हम हल्के होंगे, और योग जो प्रोसेस है शरीर से डिटैच होने की वो फास्ट होगी। अभी बैठे और अभी अलग, ये शरीर व्यवहार में वो सब अपने आप सब परिवर्तन आते ही जाएगा, हमें हल्का महसूस होगा, डबल लाइट स्थिति होगी। तो ये तो हो गई, और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, लंबे समय का, दीर्घ काल का पुरुषार्थ, बहुत लंबे साल की अवधि चाहिए, मियाद चाहिए इसके लिए। अच्छा, ओम शांति। कल के लिए
आशीष भाई,
ये भाई क्या नाम है भाई आपका? हितेश भाई, ग्रुप नंबर 2। ओम शांति। कल है ना
इम्पोर्टेंट पूछना।